ਕਰਨਾ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ brampton.ca/recreation ਤੇ ਜਾਓ।
Sodhi Furniture Store Clearance. Saving, saving, saving.
Sale, sale, sale.
Sodhi Furniture Stock Clearance.
Everything on floor, to go, warehouse, furniture sale.
Ji haan, Sodhi Furniture lagat ki kimat se kam kimat par furniture khareediye. Furniture ki is sale ka fayda uthane ke liye, Sodhi Furniture Showroom, 142 Kennedy Road South in Brampton. Huge sale, jo le gaya, so le gaya.
Jo reh gaya, so reh gaya.
Sodhi Furniture. Naya Saal Naya Furniture, 905-874-7171. Sodhi Furniture Store Clearance.
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बाशा ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बाशा,
6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773 6477293773
और नहीं जानता। आप पिछले 15 सालों से अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह अपनी इनकम और अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया जा सकता है। आपके लिए हमेशा यूनिक और इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर आते हैं। अगर आप आज की बदलती हुई रियल एस्टेट मार्केट से परेशान हैं और चाहते हैं कि आप अपने पैसों को ज्यादा सिक्योर रखते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएं, तो आज ही अदनान अलवी से राब्ता करें 416-301-0249।
दुबई जाना है।
वो क्यों?
बेटी की शादी है, सोने और डायमंड की यूनिक ज्वेलरी की खरीदारी करनी है।
छोड़ो जी, एक दफा चोपड़ा ज्वेलर को विजिट करो, दुबई से बेहतर है। गोल्ड, जड़ाऊ जेवरात, डायमंड, जड़ाऊ डायमंड ज्वेलरी, चूड़ियाँ, कड़े, पेंडेंट, हर जेवर यूनिक है और बेशुमार वैरायटी है। मजे की बात है, डिस्काउंट्स भी बहुत सारे हैं। किस किस का बताऊं? सीइंग इज बिलीविंग।
एड्रेस दें।
1066 एल्बियन रोड, एल्बियन इज़लिंगटन की नुक्कड़ पे। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलेक्शन, चोपड़ा ज्वेलर्स। 416-744-7534। कनाडा में दुबई, चोपड़ा ज्वेलर्स।
वेलकम 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 तमाम सामईन को, नाजरीन को एक बार फिर वेलकम साजो आवाज प्रोग्राम में। और आप हमें सुन रहे हैं 6478724900 पर या हमारी वेबसाइट eawaz.com और हमारा टेलीविजन जो कि तमाम ही आईपीटीवी पर मौजूद है, ई आवाज टीवी। आप आसानी से उर्दू और पाकिस्तानी कैटेगरीज में ढूंढ सकते हैं। ठीक हो गया, ढूंढ लिया आपने, फेवरेट भी कर लिया, सब कुछ सेव कर लिया। चले जनाब, साउंड इफेक्ट के साथ जो है वो हमारा रेडियो स्टेशन रेडी है, और आइए अपने रेडियो को खुशामदीद कहते हैं, जो कि आपको खबरें सुनाएगा। वो कहते हैं ना, ये रेडियो 770 है और अब आप चल जमरिक से खबरें सुनेंगे, आज की ताजा तरीन खबरें। सोचो ये ऐसे सुनाती हूँ। चले जी, उनके लिए जो है वो शैंपेन कलर का कारपेट बिछाते हैं और उसके बाद उनको कहते हैं कि जी खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
WS कैसे हो?
अल्हम्दुलिल्लाह।
मैंने कहा वो साउंड इफेक्ट नहीं आया तो इसलिए जरा लाया जाए।
होते अपने चार फॉलोअर्स को टेक्स्ट करने के लिए मैं आ गई हूँ, चलो जी लाइन अप हो जाओ।
देखो
वो बेचारे इतने लॉयल है कि वो फिर भी नहीं सुनते, इतने लॉयल है आप, चार भी नहीं सुनते। उसमें से कल आगे बताएंगे, एक कॉल आई मुझे सादिया की, एक कॉल आई मुझे इसकी, ये आपकी खबरें जो है हमने रिपोर्ट अच्छी सुनी, चार में से भी एक देख रहा होता।
यही बात है, बिल्कुल यही बात।
फॉलोअर्स बढ़ाएं अपने, लाइक
मतलब बढ़ाएंगे, सींग लगा लें, कैसे बढ़ेंगे हमारे फॉलोअर्स जो है
26,000 जो है वो
पिंड के ऊपर है आपकी।
अभी तो चेहरा, वो कहते हैं जरा चेहरा तो दिखाओ, थोड़ा मुस्कुराओ, अभी तो चेहरा दिखाया
दिखाया नहीं है, सिर्फ पिंड पे फदा है। अल्हम्दुलिल्लाह,
नियत साफ काम आसान,
कभी गुरूर नहीं किया है,
नेवर नेवर।
अच्छा अच्छा,
तो आपको भी हिदायत यही है।
हाँ,
क्योंकि हिदायत तो वैसे खैर हम क्या देने, अल्लाह ही देगा। तो कुछ कुछ करें, कुछ दें ना अपने फैंस अच्छा। के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, अपने लिसनर्स के लिए, मतलब कुछ, हमेशा ब्लड प्रेशर हाई कराती रहती हूँ, कैसे लाइक करेंगे वो आपको?
बिल्कुल सही है।
उन्हें थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखाएं, उनको थोड़ा सा एजुकेट करें, उनको जो है राह रास्त पर लेकर आएं।
ठीक है,
तब मजा।
मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ली हुई है। नहीं नहीं, मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर है, बताओ जरा है भी कि मैं लोगों को राह रास्त, जिनका काम है लोगों को राह रास्त पर आना, वो तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
हाँ,
तो हम जो है हम कैसे लोगों को राह रास्त,
तो बिल पे लड़ रहे हैं जी, मदरसा बिल और
मदरसा बिल। तो जैसे ही मदरसा बिल आया तो आप फिर माशाल्लाह से FATF की लिस्ट में होंगे। जी,
बड़े मसले
मसाइल हैं। तो ये जो मुल्ले हैं, ये मुल्लों को तो ये बातें समझ नहीं आती। अच्छा जनाब, एक आपका मैसेज आया है, एक मैसेज आया और वो भी मुझसे, मुझे डर के नहीं आपने भेजा, आपने आरफा जी को भेजा है कि शादिया जी ने जो है वो कहा है कि 190 मिलियन का पाउंड्स का जो वो जो केस था वो तोशाखाना का नहीं था। नहीं भाईजान, आप अगर गौर से सुने, मैंने उसको तोशाखाना के साथ नहीं मिलाया था, वो आपका अलकादर केस ही है। मैंने एक मिसाल दी थी कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो जुल्म ये देखें कि जो बंदा पैसे दे के गिफ्ट ले रहा है उसको आपने जेल में डाला हुआ है, और जो मुफ्त में चीजें लेके जाते रहते थे उनको, तो मैंने आपको सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात की थी। अलकादर ट्रस्ट का 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो तोशाखाना केस से मैंने नहीं मिलाया था। आई विल जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल।
इसीलिए आपके चार फॉलोअर्स हैं, पता क्या वजह? आपने उनको गलत साबित कर दिया। कौन लाइक करेगा?
नहीं, एक्सप्लेनेशन है,
जरूरत नहीं। आप उनसे कहें सर आपका सर आंखों पर,
अच्छा,
अगर कहीं गलत बयानी हो गई हो तो उसके लिए माजरत है, लेकिन वी ऑलवेज ट्राई टू डू लेवल बेस्ट।
अच्छा अच्छा अच्छा,
ये आंसर था।
वाह वाह वाह, क्या बात है गुरुजी, अब मैं आपसे सीखूंगी।
आपने विचार, अब वो बेचारे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा।
नहीं हाई नहीं हुआ, वो उनको मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन अपनी तरफ से दे रही हूँ कि भाई आप
डांट रही हूँ।
नहीं नहीं, डांटा नहीं है, एक्सप्लेनेशन दी है।
एक कम हो गया, तीन रह गए।
मैंने कोई वो गलत नहीं थी, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि ये देखें ना कि अब जो मतलब है जिन्होंने लूटा हुआ खजाने को वो बाहर फिर रहे हैं, और जो जिसने पैसे देके कोई चीजें ली हैं तो वो अंदर बाहर, मैं ये कह रही थी। अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी, जो बड़े पक्के यार हैं आमिर साहब के। इतने पैसे ना उन्होंने हमारे बचाए हैं, ना जीशान के बचाए हैं, सिर्फ आमिर के बचाए हैं। तो आप जाएं आमिर का नाम लें उनसे, तो आपको बहुत ही जबरदस्त अफोर्डेबल होम एंड ऑटो इंश्योरेंस वो देंगे। इनका नंबर है 6472903773। और जनाब पायल ज्वेलर्स असलम भाई हैं यहां पे, कहते हैं जी बड़ी जबरदस्त किस्म की दुबई सिंगापुर इंडिया पाकिस्तान की मेरे पास ज्वेलरी है, तो आप इनसे जाके ले सकते हैं। ब्रैम्पटन में ही है, तो इनका नंबर है 9057907879। ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट सलाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट, दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं, मिसिसागा में और एक ओकविल में, तो आप मिसिसागा में जाके भी एंजॉय का मजा ले सकते हैं और ओकविल में भी। मिसिसागा का नंबर है 9052323663 और ओकविल का नंबर है 9052262294। और जी लंबी वाली फाय है जी, लैम फाय। आप कहते हैं जी अगर पीस ऑफ माइंड से आपको पैहे भेजने हैं बैक होम, अगर आपके पास पैहे हैं ठीक है, और अगर आपने भेजने हैं तो फिर ये बड़ी जबरदस्त सर्विस है। अगर आपके पास $100 हैं और आप पहली दफा भेज रहे हैं तो आपको 10% कैश बैक मिलेगा। आपने जो है रेफरल कोड EZ10 इसके ऊपर यूज करना है तो आपको जो है बड़ी जबरदस्त एक मिनट में तुरंत आपके प्यारों के पास जो हैं पैहे पहुंच जाएंगे। और जी एमएक्स ट्रेवल अगेन, अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये कनेडियन पासपोर्ट वालों के लिए नहीं है, तो आपके पास बड़े जबरदस्त सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम के पैकेजेस हैं और आप हज के लिए जा सकते हैं इसके ऊपर, तो आप इनको कॉल कर रहे हैं प्लीज। एमएक्स ट्रेवल वालों को इनका नंबर है 4165995200। ठीक है जी। अच्छा जनाब, खरबें हम अपनी शुरू कर लेते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खरबें ये हैं कि ट्रूडो साहब के पास आमिर साहब रेजिग्नेशन के अलावा और क्या ऑप्शंस हैं। है जी, जैसे हमने आपको कल बताया था कि उनके एडवाइजर कुछ उनके आसपास जो है वो काम कर रहे हैं कि उसके ऊपर क्या किया जाए। अच्छा जी, अब हम आपका दिल दुखाने वाली, मैंने कहा पहली खबर से ही दिल दुखा दिया जाए। पहली खबर वो कहते हैं जी कि वैसे तो बहुत सारे जो इनके अपने खुद के भी कॉकस के मेंबर्स हैं वो इनको कह रहे हैं कि भई आप रिजाइन करो, लेकिन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा इनके पास इमेंस पावर्स हैं और इनको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। अगर ये अपना टर्म पूरा करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल पूरा कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल ये खुद सोचें कि मुझे छोड़ना है तो फिर इनको हटाया जा सकता है, वरना यूनिलैटरली अगर सारे लोग भी इनके अगेंस्ट हो जाएं तो यूनिलैटरली ये जो है कंट्री को गवर्न कर सकते हैं और रन कर सकते हैं उस वक्त तक जिस वक्त तक के पैसा खत्म ना हो जाए। तो पैन पैसा कैसे खत्म होएगा? पैन क्या बात करते हैं आप, है व्हाट इज दिस? तो फिर वो कहते हैं जी के लिबरल पार्टी जो है उनको जो है फोर्स नहीं कर सकती। उसकी वजह क्या है? लिबरल पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ऐसा कुछ चीज है ही नहीं कि जिसमें वो कहें कि जी हम एक लीडरशिप वोट करेंगे और जो है उसके थ्रू हम इनको ऐसे निकालेंगे। और फिर वो कहते हैं जी कि ये नेक्स्ट इलेक्शन तक जो है ये इसलिए प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं, अगेन अगर अनलेस एंड अनटिल वो खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे स्टेप डाउन करना चाहिए। तो वो कहते हैं जी कि ये जो इसके अलावा एक और तरीका है, एक और तरीका यह है कि लिबरल पार्टी और कॉकस जो है इनके खिलाफ यूज कर सकता है रिफॉर्म एक्ट 2014 बिल, जिसके के अंडर पार्टी लीडर्स जो है वो रिव्यू कर सकते हैं इनका लीडरशिप और इनको कह सकते हैं कि भाई तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो या क्या, या पार्टी के लिए ठीक नहीं हो, तुम जो है रिजाइन करो बस। लेकिन वो कहते हैं जी कि कौन ये यूज करेगा ये प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है। और 20% एमपीज जो है उन्होंने वैसे एक फॉर्म साइन किया जिसमें कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप रिजाइन करें, बट आई मीन दैट्स अबाउट इट। 50 लिबरल एमपीज जो हैं उन्होंने बहुत पब्लिकली इनको कहा है कि भई आप जो है यू शुड स्टेप डाउन। 1/3 ऑफ हिज 154 मेंबर कॉकस जो है वो कहते हैं जी कि वो इनके साथ अब कोई ना कोई किसी किसी मौके पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगेन जैसे हमने आपको कहा कि उसके पास इमेंस पावर्स हैं एज प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। और कल फ्राइडे का हम आपको दिन बता दें कि कल फ्राइडे के दिन ये अपनी कैबिनेट रीशफल कर सकते हैं ट्रूडो साहब, तो उस पे जो है हमारी भी नजर रहेगी, जो भी नए कैबिनेट पोजीशंस आएंगी वो फिर हम अपनी वेबसाइट पे भी डालेंगे। पीएम पालियव साहब जो हैं जी वो अब बहुत ज्यादा ट्रूडो साहब को जाहिर है कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये जो, और बड़े आज उन्होंने खराब किस्म के वर्ड्स यूज किए, उन्होंने कहा कि ये लिबरल जो है ये इस वक्त क्लाउन शो चला रहा है। अब भाई ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए, आपका आप भी लीडर हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये कैनेडियन पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग होता जा रहा है और ट्रूडो को रिजाइन करना चाहिए, जबकि उनकी फॉरेन मिनिस्टर और जो उनकी उनकी फाइनेंस मिनिस्टर और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थी क्रिस्टिया फ्रीलैंड, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। सोचा ये जा रहा है कि शायद हाउसिंग मिनिस्टर शॉन फ्रेजर जो हैं वो अगर तो ट्रूडो साहब ने सोचा कि मैं स्टेप डाउन करूंगा तो उनकी जगह पे आ सकते हैं और रन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो आ सकते थे लेकिन उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि मैं रन नहीं कर रहा। ये जो उनकी सेंट्रल नोवा की जो राइडिंग थी उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल नहीं रन इसको कर रहा। पॉलियर साहब ने कहा कि इस वक्त जो है कनाडा को बहुत ही क्योटिक तरीके से चलाया जा रहा है, जहां के प्राइसेस जो है बड़ी हाई हैं और लोग जो है उसकी प्राइस पे कर रहे हैं, हाउसिंग के मसले हैं, इमिग्रेशन ठीक नहीं है और भी बहुत सारी चीजों पर उन्होंने एतराज किया। उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसने अपना लूज कर दिया है कंट्रोल, इमिग्रेशन, बॉर्डर स्पेंडिंग, डेट, इन्फ्लेशन, हाउसिंग प्राइसेस एंड इवन क्राइम्स। और उन्होंने कहा जी कि इतना ज्यादा डिसहार्टन हो गई थी इनकी अपनी क्लोजेस्ट जो फ्रेंड थी और टॉप इनकी मिनिस्टर थी कि वो तक इनको छोड़ के चली गई है क्योंकि इकोनॉमी में इतने ज्यादा डेफिसिट्स आ रहे थे। और फिर से उन्होंने कहा कि कनाडा नीड्स एक्स द टैक्स इलेक्शंस, तो ये उन्होंने कहा। लेकिन पैजन पीए पालियर साहब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थी वो तो खुद ही क्रिस्टिया फ्रीलैंड थी, तो वो कैसे डेफिसिट तो उन्हीं की वजह से बढ़ा होगा ना, उनकी जो उन्होंने पॉलिसीज बनाए होंगे, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का तो कोई रोल नहीं है। अच्छा जनाब, जगमीत सिंह साहब जो हैं आपको पता ही है कि अभी बिगनिंग ऑफ 2024 तक तो कर रहे थे इनको, ट्रूडो साहब को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, अब जबकि साल एंड हो रहा है तो अब ये ट्रूडो साहब को जो है नहीं कर रहे हैं और लग भी नहीं रहा है ऐसे कि ये इसको करेंगे। बड़ी देर तक लिबरल पार्टी के साथ ये अलायंस में थे और हो सकता है कि ये कंजर्वेटिव पार्टी और ब्लॉक की बैकवा को किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट को हराया जा सके और नए इलेक्शन जो हैं उनकी तरफ जाया जा सके। इनसे जब पूछा गया, एक इंटरव्यू इनका हो रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि क्या आप जो नेक्स्ट अगर कोई आ जाती है नॉन कॉन्फिडेंस मूव तो उसमें आप कहां पे बैठे होंगे, तो उन्होंने कहा जी कि ऑल द ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, यानी कि ये दूसरी साइड पे भी जाके बैठ सकते हैं। और उन्होंने कहा जी कि मुझे नहीं लग रहा कि लिबरल पार्टी का जो है चांस है नेक्स्ट इलेक्शंस में जीतने के लिए, तो आज जगमीत सिंह साहब ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन एनडीपी और कंजर्वेटिव्स के बीच में होगा, लिबरल पार्टी तो कहीं पे भी नजर नहीं आएगी क्योंकि और उसमें से भी लोगों के पास ज्यादा अच्छी चॉइस जो है वो एनडीपी है, इसलिए क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो चीजों को कट करना चाहती है और एनडीपी जो है वो मोर लाइफ को अफोर्डेबल बनाना चाहती है। उन्होंने कहा जी कि मुझे बहुत बड़ा ये प्रिविलेज है, मुझे ये जो पोजीशन दी गई है, तो इसलिए ऑन डेली बेसिस मैं ये सोचता हूं कि मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या पॉसिबल है उनके लिए करने के लिए, उनके लिए जिंदगी बेटर बनाना, अफोर्डेबल करना, और मेरा फोकस यही रहता है कि मैं लोगों को हेल्प कैसे करूं। तो ये आज जनाब इंटरव्यू जो है उसमें बहुत बड़ी आज उन्होंने जगमीत सिंह साहब ने स्टेटमेंट दी है। मार्क मिलर साहब जो हैं जी हमारे मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप जो हैं, उन्होंने जनाब काफी स्वीपिंग किस्म की जो हैं इमिग्रेशन के अंदर जो हैं वो अनाउंस की हैं चेंजेस, और उन्होंने कहा है जी कि ये तमाम की तमाम सर्विसेज जो हैं ये ऑनलाइन हम अब करने लगे हैं और ज्यादा एफिशिएंटली, पहले भी ऑनलाइन थी अब ज्यादा एफिशिएंट होंगी। उन्होंने कहा जी कि अमेंडमेंट्स हम ला रहे हैं इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जो कि जो आईआरसीसी है उसको ग्रेटर अथॉरिटी देगा और इस सिलसिले में वो कैंसिल, सस्पेंड या मॉडिफाई कर सकेंगे इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स को, लाइक वीजाज इन केसेज ऑफ फ्रॉड एंड सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कि हमारे मुल्क के अंदर कौन और आ रहा है, तो हम उन इंडिविजुअल्स को रोकेंगे जो कि हाई रिस्क होंगे अपने कंट्री में एंटर होने के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी ये जो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है इसको भी रिफॉर्म करने की जरूरत है क्योंकि इसको लोग बहुत ज्यादा फ्रॉड के लिए यूज कर रहे हैं और एडिशनल पॉइंट्स के लिए यूज कर रहे हैं फॉर जॉब ऑफर्स अंडर एक्सप्रेस एंट्री, ये भी हम रिमूव कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लॉयटेशन आ गई ऑफ लेबर मार्केट जो है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये जो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जिसको कि LMIA प्रोसेस कहते हैं, उसके ऊपर भी हम बहुत सारे जो हैं रिडक्शंस अब लगा रहे हैं। अंडर सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट असाइलम सीकर्स जो हैं वो भी अब यहां पे आके असाइलम नहीं जो है स्टेटस ले सकेंगे, जो फर्स्ट सेफ कंट्री जिसके से वो एंटर होंगे कनाडा और यूएसए में, वहां पे उनको ये अपना जो है रेफ्यूजी स्टेटस जो है वो बताना पड़ेगा, इससे सॉरी असाइलम जो है वो बताना पड़ेगा कि हम लेना चाहते हैं, तो फिर उनको रेफ्यूजी स्टेटस जो है वो उनका प्रोसेस किया जाएगा और वो भी केस टू केस बेसिस पे देख के। इसी तरह वो कहते हैं जी कि ये जो हमने सारे मेजर्स दिए हैं उसकी वजह से इलीगल क्रॉसिंग्स जो हैं कनाडा में बहुत ज्यादा ड्रॉप कर गई हैं, 165 पीपल पर डे होती थी मार्च 2023 में, जो कि अब रिड्यूस होके इस साल जो है जस्ट 12 पर डे जो है वो रह गई हैं। तो और भी जो हमने आपको बताया था कि जो लिब्लॉन साहब ने भी, जो डोमिनिक लिब्लॉन साहब ने भी जो बताई हैं सारी चीजें जो बॉर्डर पे वो कर रहे हैं ड्रोन्स एंड ऑल दैट, तो मुझे लगता है कि उससे और भी ज्यादा चीजें अब टाइट होंगी। पैलेस्टीनी ऑफिशियल्स जो हैं वो अब समझ रहे हैं और उनको लग रहा है कि जैसे अब गाजा का सीज फायर हो सकता है क्योंकि काफी मारामारी भी वहां पे हो चुकी है। कुछ पैलेस्टीनी ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने बात की है मीडिया के साथ और उन्होंने कहा है कि ये सारे का सारा जो अब है काम तीन फेजेस के अंदर होएगा, जिसमें कि फर्स्ट फेज में औरतें और बच्चे और जो ویمن سولجرز ہیں جو کہ جن کو کہ ہاسٹج غزہ میں بنایا گیا ہے ان کو دا فرسٹ 45 ڈیز میں ریلیز کیا جائے گا. پھر اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ پل کریں گی فرام سٹی سینٹرز, کوسٹل روڈز اور اسٹریٹجک اسٹرپ جو ہے بٹوین پیلسٹائن اینڈ ایجپٹ. اس سے اس کے بعد جو ہے ڈسپلیسڈ غازنز جو ہیں ان کو کہا جائے گا کہ وہ اپنی ٹیریٹری میں نارتھ میں آئے. سیکنڈ اسٹیج جو ہے اس کے اندر باقی کے ہاسٹجز جو ہیں ان کو ریلیز کیا جائے گا. 96 ہاسٹجز لگ رہا ہے کہ ابھی بھی غزہ کے اندر ہیں, اور یہ پلان جو ہے اٹ از پارٹ آف دا بائیڈنز پلان جو کہ انہوں نے آؤٹ لائن دی تھی جس کی May 31st کو, اور عرب اور یو ایس جو میڈیٹرز تھے بڑے دن رات کام کر رہے تھے کہ کسی طرح ڈیل جو ہے وہ اس کے بیچ میں اسرائیل اور حماس کے بیچ میں ہو سکے اور جو ہے یہ کام چلے. اور تیسرے فیز میں پھر جو ہے کمپلیٹ سیز فائر اور وہ سارا کچھ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا ہاسٹیجز کا, اور وہ سارا جو ہے وہ چلے گا. تو تین سٹیجز میں چلے گا. لیکن آج بھی جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اسرائیل نے جو ہے پیلسٹائن کے اوپر اٹیک کیا, 13 لوگوں کو اور مارا. حماس نے اس کے علاوہ کہا کہ جو اسرائیل کانسٹنٹلی یمن کے اوپر کر رہا ہے اسٹرائکس, یہ بڑا ڈینجرس جو ہے ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بیچ میں یو ایس نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیون نے بھی آج کہا ہے کہ ہم کوئی پریڈکشنز نہیں دے رہے, ہم کوئی پرومسز نہیں کر رہے, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وی آر ریلی کلوز ان ٹاکس. اور نتن یاہو نے بھی پہلی دفعہ بڑا کلیئرلی ہمیں بتایا کہ وہ ایک ڈیل کے لیے ریڈی ہے. اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیز فائر بھی ہوئے گا, ہاسٹیجز جو ہیں گھر آئیں گے اور ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے پھر غزہ کے اندر جا سکے گی. تو ظاہر ہے جی اب جھون فٹافٹ کام مجھے کرنا ہے کیونکہ جڑے ٹرمپ صاحب جی آ رہے ہیں 20 جنوری نو, تو ظاہر ہے انہوں نے دسنا ہے نا کہ جی او جی ہم نے ہی وار رکوائی تھی, کوئی تم نے تیر نہیں مارا. آج جناب گوانتانامو بے جو ہے ان سے اور بھی دو پیلسٹینینز جو ہیں ان کو اس یو ایس ملٹری پریزن سے 18 سال کے بعد ریلیز کیا گیا ہے. محمد فارق بن امین اور محمد نذیر بن لپ جو ہیں یہ, ان کے بارے میں آج ملیزیا نے کہا ہے کہ جی یہ بڑی اچھی گڈ ہیلتھ میں یہاں پہ پہنچ گئے اور اپنے فیملیز کے ساتھ آ کے یونائٹ ہوئے ہیں. دے پلیڈڈ گلٹی ٹو چارجز ریلیٹڈ ٹو 2002 بالی بومنگ جس کے اندر 200 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. پینٹاگون نے کہا جی کیونکہ یہ کوآپریٹ کر رہے تھے اور ہم کو ٹیسٹیمونیلز دے رہے تھے کہ یہ جو رنگ لیڈر تھا بالی بومنگ کا این سیپ نور جمان, تو جس کو کہ ہمبلی بھی کہا جاتا تھا اس کے خلاف, تو اس لیے ہم نے جو ہے ان کو چھوڑا, بڑا بہت جلدی چھوڑ دیا ہے. 18 سال تو بہت ہی کم دن ٹائم تھا, تھوڑا اور رکھنا تھا. اور یہ جو نور جمان ہے یہ ابھی بھی ان کی کسٹڈی کے اندر ہے اور اپنی پری ٹرائل ہیئرنگ جو ہے اس کا ویٹ کر رہا ہے, لگتا ہے کہ جنوری کے اندر شروع ہوئے گی. اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے یو ایس ڈیفینس ڈپارٹمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ ایک کینین جو ہے اس کی بھی ریپیٹریشن کر رہی ہیں, اور اس نے بھی عامر صاحب بہت ہی کم دن گزارے تھے, صرف 17 سال. ہاں صرف اونلی. ہاں محمد عبد المالک باجابو جو ہیں ان کو اب چھوڑا گیا ہے, لیکن ابھی بھی یہاں پہ 15 لوگ جو ہیں گوانٹانامو بے میں ہیں جو کہ دے آر بیہائنڈ دا بارز, اور ان کے اوپر بھی کوئی چارجز نہیں ہے. یہ جو کینین تھا بیچارہ اس کے اوپر بھی کوئی چارجز نہیں تھے, پھر بھی اس کو 17 سال رکھا, اور باقی کے بھی جو 15 ہیں ان کے اوپر بھی کوئی چارجز نہیں ہے اور ان کو بھی ابھی رکھا ہوا ہے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی جو ڈیفی ایویٹر ہیں آفیشل, انہوں نے کہا ہے جی کہ بائیڈن صاحب کو امیڈیٹلی یہ اب اناؤنس کر دینا چاہیے کہ ان لوگوں کو جو ہے چھوڑ دیا جائے آفس جانے سے پہلے, تاکہ یہ بدنام زمانہ جو پرزن ہے کیوبا کے اندر ان کی وہ بند کی جا سکے. تے پائی جان ہوں پتہ نہیں انہوں نے کدوں کرنا ہے, کیونکہ وعدے جو ہیں امریکہ کے وہ تو اوباما صاحب کے زمانے سے ہی آ رہے ہیں. اوباما صاحب جب الیکشن ٹریل پہ تھے تو انہوں نے کہا تھا پہلا کام جو میں کروں گا آتے سار ہی میں یہ شٹ ڈاؤن کروں گا گوانٹانامو بے, تو اب آپ دیکھ لو جی اب وہ بند کر رہے ہیں. تھاؤزنڈ آف امیزون امپلائیز جو ہیں یو ایس اے میں وہ اسٹرائک پہ جا رہے ہیں این کریس میز کے پاس, کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہم نیگوسیشنز کر رہے تھے امیزون کے ساتھ یہ بالکل جو ہے آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. وی ور ایسکنگ فار بیٹر پے اینڈ کنڈیشنز, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو گریڈی ایگزیکٹوز ہیں جن کی جو ہماری وجہ سے بے تحاشا رچ ہو گئے ہوئے ہیں اور ان کا جو انسیٹیبل گریڈ ہے وہ کسی طرح سے کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے, اور جب ہم اپنا حق مانگتے ہیں تو ہم کو نہیں دیتے ہیں. ٹیمسٹرز یونین جو ہے اس نے کہا کہ ویئر ہاؤس کے ورکرز جو ہیں اب پکٹ لائن کو جوائن کریں گے نیو یارک, اٹلانٹا اینڈ سان فرانسسکو, جو کہ لارجسٹ اسٹرائک ہوئے گی اس کمپنی کی ہسٹری میں. اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ کے جو ہالیڈے کے پیکجز دیر سے پہنچیں گے تو یہ اس میں امیزون کا قصور ہے, ہمارا نہیں ہے. ہم ان کو کانسٹنٹلی کہہ رہے تھے کہ ہماری بات سنیں, اور جو ہے ان کے پاس چانس تھا کہ یہ ریسپیکٹیبل طریقے سے اپنے جو ہیں یہ جن ورکرز کا سن لیتے ہیں، ان کا خیال کر لیتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے ہیوج پروفٹس جو ہیں وہ پاسبل بنائے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں سنا، اس لیے انہوں نے پش کیا ہے ورکرز کو کہ یہ بالکل اپنی جو ہے یہ اب اسٹرائک کریں اور جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ جب تک پورے نہیں ہوں گے یہ واپس نہیں جائیں گے. تو ایک اسپوکس پرسن جو ہے امیزون کے، اس سے پوچھا گیا کہ کیا بھائی اس کا آپریشن کا اثر جو ہے کینیڈا پہ بھی ہوگا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، کینیڈا پہ جو امیزون ہے اس کے اوپر جو آپریشن ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں آئے گا. ترکیہ کے فارن منسٹر جو ہیں حکان فدان، انہوں نے آج ڈینائی کیا ہے ٹرمپ صاحب کے سارے جو کلیمز ہیں، کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ٹاپلنگ ہوئی تھی اس کی جو بشار الاسد کی وہ بہت ہی ان فرینڈلی ٹیک اوور تھا بائی ترکیے. ایک پریس کانفرنس جو ارلیئر دس ویک ہوئی تھی اس میں انہوں نے ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ ترکیے نے بڑے اسمارٹلی ان فرینڈلی طریقے سے یہ جو ہے ٹیک اوور کیا ہے، جس میں کہ لائیوز کا لاس جو ہے وہ سیریا کے اندر نہیں ہوا ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ بڑا ہی آپ غلط سوچ رہے ہیں، ہم نے کوئی ترکیے نے سیریا کا ٹیک اوور نہیں کیا، نہ ہی ہم ڈریم کرتے ہیں اس کو کرنے کے لیے، یہ لوگوں کا ول ہے جس نے ٹیک اوور کیا ہے وہاں پہ بڑے عرصے کے بعد. دا لاسٹ تھنگ ترکیے وانٹس ٹو سی از کہ ریجنل پاورز جو ہیں وہ سیریا کو کنٹرول کریں، چاہے وہ ایرانینز ہیں، چاہے وہ ٹرکس ہیں، چاہے وہ عربز ہیں، کسی کو نہیں ہم چاہتے کہ وہ سیریا کے اوپر رول کریں، سیریا کو سیرینز کو رول کرنا چاہیے، اور ہم ان کو صرف سالیڈیرٹی ان کے ساتھ دکھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایکچولی سیریا کو رول کر رہے ہیں. ایک اور کوشچن پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پیپلز پروٹیکشن یونٹ ہے جس کو کہ وائی پی جی کہتے ہیں یا کہ پی کے کے والے جو ہیں، یہ کانسٹنٹلی تھریٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں ترکیے کو، تو ہم ان کے خلاف ایکشن کرتے رہیں گے. اور پی کے کے جو ہے وہ تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی لسٹ پہ بھی ہے، نہ صرف ترکیے کے جو منسٹری ہے آف ڈیفنس بلکہ ویسٹ کے اندر بھی اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو وائی پی جی ہے یہ پی کے کے کی ایکسٹینشن ہے یہاں پہ سیریا میں. تو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید یہ چیزیں جو ہیں تھوڑا سیٹل ہوئیں گے. پوٹن صاحب نے آج کہا ہے جی کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سیریا کے اندر بشار الاسد چلا گیا ہے اور رشیا جو ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے تو یہ آپ کی بالکل خیال آپ کر رہے ہیں اس کا، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اپنے فرسٹ پبلک کامنٹس جب سے کہ یہ بشار الاسد گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ڈیفینیٹلی میری ابھی تک اس سے ملاقات تو نہیں ہوئی ہے، مگر میں اس کی سے ملاقات کروں گا ماسکو کے اندر جا کے، اور میں یہ بھی پوچھوں گا کہ وہ جو یو ایس رپورٹر ہے آسٹن ٹائس اس کے بارے میں یہ مجھے کیا بتا سکتا ہے. اس لیے کیونکہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ کافی پریشان تھا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں پہ ہے. وہ آج پوٹن صاحب جو اپنی اینول اینڈ آف دا وار نیوز کانفرنس ہوتی ہے وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے بالکل یہ ڈسمس کیے کلیمز کہ ہم نے جو ہے جو کہ ویسٹ کہہ رہا ہے کہ 2015 میں سیریا میں انٹروین کیا تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی انٹروین نہیں کیا تھا اور کوئی ہماری وجہ سے وہاں پہ لاسز جو ہیں نہیں ہوئے تھے، ہم تو جو چاہتے تھے ہمارا جو گول تھا وہ ہم نے اٹین کر لیا تھا، لیکن ہم نے کوئی انٹر نہیں کیا تھا سیریا کے اندر. اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں جو بلایا تھا سیریا نے وہ اس لیے بلایا تھا کہ بہت سارے ٹیررسٹ انکلیوز تھے وہاں پہ، ان کو ڈسٹروائے کرنا تھا، تو ہم نے اپنا اکوپمنٹ ان کو دیا تھا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے انویڈ کر گئے ہیں. تو وہ سیم کنڈیشن اب جو ہے اس وقت یورپین یونین کی بھی، اب جبکہ بشار الاسد چلا گیا تو یورپین یونین بھی جو ہے شیئر آف دا پائے چاہتے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی جو ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ ٹریڈ کریں اور دوستیاں بنائیں اور یہ کریں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری بھی ڈیل ان کے ساتھ ایسی ہی تھی، ایسا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں سر، دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی لائف ٹائم گروپ. اس کے پریزیڈنٹ ہیں جی عدنان الوی صاحب. عدنان الوی صاحب کہتے ہیں جی آپ کو کسی طرح کا کچھ بھی انشورنس چاہیے تو میرے کول آؤ، اور ان کا نمبر ہے 416-301-0249. ڈینٹسٹری آن رج وے. اب مسز آگا سے یہ رجوے تک بھی پہنچ گئی ہیں، یعنی کہ اب انہوں نے دوسرا نیا اچھا کلینک بھی ایک اور بھی کھول لیا ہے رجوے میں. تو وہ کہتے ہیں یعنی کہ یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ پہلا والا گندا تھا، پہلا والا بھی بہت ہی اچھا تھا، لیکن یہ بھی بہت ہی اچھا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ دانتوں کے آپ کے کوئی بھی مسئلے ہیں تو آپ ہمارے پاس یہاں پہ مسز ساگا میں آ سکتے ہیں، اور ان کا نمبر ہے 9058200200. اور جناب الحبیب ٹریول کہتے ہیں جی پی آئی اے کے نیو ایئر کے سیٹ سیلز جو ہیں ہمارے پاس آ گئے ہیں، 10% آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے. آپ اپنا نائیکاپ پاسپورٹ کا کاپی اور جو ہے پاکستان کا ویزا اور وہ پاسپورٹ لے کر آؤ تو آپ کو جنوری 21 سے مارچ 25 کے بیچ میں بہت اچھے جو ہیں وہ پیکجز دیے جائیں گے. اور ان کا نمبر ہے 9055547786. और ये कहते हैं जी कि हम सातों दिन खुले हैं। और जनाब चोपड़ा ज्वेलर्स भी कहते हैं जी आओगे तो एंजॉय का मजा लोगे, क्योंकि दुबई जैसी यहां पे ज्वेलरी पड़ी है हमारे पास, एलिगेंट, यूनिक, स्टाइलिश। और एलवियन रोड पे हैं ये टोबिको में। अगर आपको इनको कॉल करके कुछ मालूम करना है तो आप इनको कॉल कर लें 416-744-7534। ठीक है जी। अच्छा जनाब, हमने आपको कल बताया था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पहुंच गए हैं D8 की समिट अटेंड करने के लिए कायरो में, और यानी ये फकीरों की जो हो रही है नहीं जो है D8 डेवलपिंग कंट्रीज है भाई डेवलपिंग एड है, G7 नहीं है तो क्या हुआ, D8 तो है ना भाई, व्हाट इज दिस। ठीक है जी, तो वहां पे ये जो है इनकी मुलाकातें जो उन्होंने बड़ी तारीफें की है, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी की, कि उन्होंने बड़ा मुझे वार्म वेलकम किया, मुझे भी और मेरे डेलीगेशन को भी। इनकी मुलाकात जो है सीसी साहब के साथ रॉयल पैलेस ऑफ इजिप्ट इन कायरो में हुई थी, और फिर उन्होंने वो जो विजिटर्स बुक होती है उसमें भी बड़े अच्छे इनके लिए लफ्ज लिखे। उन्होंने सबसे बड़ी बात की कि ये जो कुछ भी गाजा के अंदर हो रहा है, ये जो इसराइल ने हैवक वहां पर रख किया हुआ है, तो ये इसको खत्म करने की जरूरत है। और वो सिर्फ अब गाजा तक नहीं रह गया है, वो वेस्ट बैंक, लेबनान और सीरिया तक भी जो है जाके वहां पे भी अटैक्स कर रहा है। और उन्होंने कहा जी कि ये जो गाजा का चैप्टर था वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसमें कि ह्यूमन ट्रेजेडी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद उन्होंने जो कहा कि जी ये चूंकि इसका जो थीम है वो यूथ है, यूथ इन्वेस्टमेंट, तो उन्होंने कहा जी हमने यूथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बड़ा जरूरी है और हम भी कर रहे हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी D8 ये सेटअप की गई थी 1997 में इस्तंबुल में, इसीलिए उन्होंने कहा जी कि इस्तंबुल पाकिस्तान ईरान तुर्की ये कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है वो भी बड़ा ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, और उसकी उन्होंने बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा जी कि ये जो डेवलपिंग 8 नेशंस हैं, इजिप्ट, नाइजीरिया, तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ईरान, मलेशिया, इनको और ज्यादा कोऑपरेशन करने की जरूरत है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर 60% पॉपुलेशन 30 से अंडर है और उनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन हम उनको राइज नहीं करने देंगे पोटेंशियल उनके अंदर है लेकिन उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, इसीलिए हमने पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम शुरू किया है, और उसके अंडर 600,000 लैपटॉप्स हमने हाई अचीवर्स को दिए हैं। इसके साथ साथ पीएम्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम जो है उसमें हमने यंग पाकिस्तानियों को बिलियंस ऑफ रूपीज के लोन्स दिए ताकि वो अपने बिजनेसेस सेटअप कर सकें। तो उन्होंने कहा जी कि हम यूथ की प्रोग्रेस के लिए पाकिस्तान में बहुत कुछ कर रहे हैं, हमने सिर्फ इंटरनेट बंद किया है और तो हम और हम उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बाकी सब कुछ खुला है, बाकी सब खोला हुआ है हमने उनके लिए। अच्छा जनाब, यूएस ने जो है पाकिस्तान की 3 जो कंपनीज हैं उनके ऊपर सैंक्शंस जो लगाए थे, हमने आपको कल बताया था, उसके ऊपर अब जो है फॉरेन ऑफिस का रिएक्शन आया है। यूएस ने लगाए हैं सैंक्शंस नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 कमर्शियल एंटिटीज जो हैं, क्योंकि यूएस अपोज करता है पाकिस्तान का मिसल प्रोग्राम, तो लेकिन जाहिर है इंडिया का तो नहीं कर सकता ना, तो पाकिस्तान को कर सकता है। तो पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन एंड फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, नहीं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो है, उन्होंने एक्स के ऊपर लिखा है जी कि पाकिस्तान की ये जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है सिर्फ अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए है, और ये जो आपने सैंक्शंस लगाए हैं ये जो इलाके के अंदर पीस और सिक्योरिटी है उसको खराब करेगी, और जो दूसरी मिलिटरीज हैं उनको और ज्यादा बढ़ावा देगी, ये बहुत ही इसके डेंजरस इम्प्लीकेशन होंगे, और ये जो स्टेबिलिटी है रीजन की उसको खराब करेगा। उन्होंने कहा जी ये प्रोग्राम जो है 240 मिलियन लोग जो हैं हमारे मुल्क के उनको अपने लीडर्स के ऊपर यकीन है कि वो इस प्रोग्राम को चलाएंगे, और उसकी सैंक्टिटी जो है वो उसको जो है उसके अंदर उनका ट्रस्ट है। तो और तमाम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के बीच में ये जो है बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है और उसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और आप मेयर सस्पिशन की बिना के ऊपर जो है वो ये नहीं कर सकते। वैसे तो दूसरे बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो जो कि गलत कामों में इन्वॉल्व हैं उनके लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपने बिल्कुल वेव ऑफ कर दिए हैं, तो ये बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं और डिस्क्रिमिनेटरी आपकी प्रैक्टिस है जो कि अंडरमाइन करती है आपकी क्रेडिबिलिटी कि आप जो नॉन प्रोफेशन रिजीम्स जो हैं उनको आप उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं, और ये रीजनल जो पीस और सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत ही खराब काम है। हाँ जी, होर हुण तुसी मदरसा बिल लैके आओ फिर देखो तुसी तुहाडे नाल की हुंदा। ठीक है, पीटीआई के जो लीडर्स हैं शाह महमूद कुरैशी, केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, इनको जनाब इंडाइट किया गया है 12 और लोगों के साथ इन अटैक ऑन GHQ इन रावलपिंडी ड्यूरिंग May 9 प्रोटेस्ट लास्ट ईयर। जो ATC यानी कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट है उसने इंडाइट किया है, दूसरे भी कुछ पीटीआई के जो है ऑफिशियल्स को, जिसमें के हैं कमल शौजेब, शहरयार आफरीदी, शिबली फराज, और उनको काजी वो एलिजली इसके अंदर इन्वॉल्व थे। 113 जो है उनको ऑलरेडी इंडाइट किया गया है। सो फार कोर्ट जो है उसने 6 जो एक्यूज हैं उनको बुलाया था इन केस ऑन दिसंबर 21st, और जो शाजेब और कुरेशी, शोजेब और कुरेशी और अली जो हैं उन्होंने फाइल किए थे पिटीशंस फॉर एक्विटल इन द केस, जिसको के जो हैं अब एटीसी के जज कल सुनेंगे। अर्लियर दिस वीक कोर्ट जो थी उसने इंडाइट किया थे 9 लोगों को, जिसमें थे शीरी मजारी, राशिद हाफिज, खादिम हुसैन खोकर, जकीरउल्ला, अजीमुल्ला, ताहिर सादिक, मेहर जावेद और चौधरी आसिफ और मुनीर। तो बस जी भाईजान, मैनू तो लग रहा कोर्ट से कोल और कोई कम ही नहीं है सिवाए पीटीआई दे उते जड़े ने वो स्यापे खड़े करन दे। आज जो है ये खबर बहुत ही इसने हैरान किया लोगों को, और अगर आप इस वक्त ट्विटर का ट्रेंड देख रहे हैं तो लोग काफी पागल हुए हुए हैं, क्योंकि ये आज की जो खबर है ये काफी बड़ी रही। पीटीआई ने टर्मिनेट किया है बेसिक मेंबरशिप ऑफ फेमस म्यूजिशियन एंड गिटारिस्ट जो इमरान खान के बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं सलमान अहमद, जिनके आपको पता ही हम बड़े इंटरव्यूज भी लेकर आए थे, क्योंकि उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने अनवारंटेड पोस्ट किए हैं खान साहब के फैमिली के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर। पीटीआई ने एक इनको नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें उन्होंने कहा जी कि आप डिविजन पैदा कर रहे हो पार्टी में, डिसकंटेंट कर रहे हो, और ये जो इनके सपोर्टर्स के बीच में अनवारंटेड जो पोस्ट आप डाल रहे हो ये सोशल मीडिया पर, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको जो है हम आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, और आपके जो स्टेटमेंट्स हैं हम आपको बताना चाहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो है अच्छा, उसके बाद जब ये रिपोर्ट आई तो मैंने सलमान को जाहिर है कि मैसेज भेजा, मैंने कहा सलमान साहब आप बताओ इसके ऊपर कि आपका टेक इसके ऊपर क्या है। तो सलमान ने मुझे जो चीज लिख के भेजी वो मैं आपको जो है पढ़ के सुना देती हूं। उन्होंने एक तो सबसे पहले मुझे बात की कि ये मुझे कह रहे हैं कि हमने आपकी मेंबरशिप खत्म की है। मैं तो कभी इनका मेंबर था ही नहीं, मैं तो सिर्फ जो है इमरान खान का दोस्त था, और उसके दोस्त की हैसियत से जो था मैं अभी तक इनके साथ काम कर रहा हूं। तो मेरे लिए तो मेरी तो ये कैसे कह सकते हैं कि जी हमने आपको जो है वो इसके मेंबरशिप से निकाला है। मैं तो कभी भी पीटीआई का मेंबर नहीं था, मैं तो सिर्फ एक स्पेशल एडवाइजर था टू इमरान खान, और उसके लिए मेरी जो है वो जान भी हाजिर है। ये जो आईएसआई के कुछ डाउट्स जो हैं ये पीटीआई के अंदर आ गए हैं और वो अब सामने हौले हौले एक्सपोज होते जा रहे हैं, तो मैं और मेरा इंटेंशन भी यही था कि ये जो है सारे एक्सपोज हो जाएं। और वो कह रहे हैं कि जी आने वाले दिनों में आपको खुद से पता चलेगा कि ये लोग जो झूठ बोल रहे हैं ये कैसे बोल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे, मैंने कहा कि आप हमसे जरा 5 मिनट बात कर लें, उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा हूं, और जो है वो बहुत जल्दी जो है मैं जो है ये इसके ऊपर जो है यानी कि क्लैरिफिकेशन लेकर आऊंगा। वो कहते हैं जी आपके अलावा बहुत सारे जो आसिम मुनीर और फैसल नसीर साहब के जो बहुत सारे प्यार मोहब्बत करने वाले जो उनके चैनल हैं जिनको इनकी आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे सुबह से कॉल करने शुरू किए हुए थे और वो मुझे कह रहे थे आप इंटरव्यू दें। जाहिर है कि मैं उनके साथ बिल्कुल बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरा नैरेटिव सही से प्रेजेंट नहीं करते हैं। मैं इस वक्त सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि वहां पर मेरा जो नैरेटिव है वो सही आता है, वो फेक नहीं होता है एटलीस्ट। तो ये जी सलमान ने फिर हमको बताया। पीपीपी के जो लॉ मेकर्स हैं जी, उन्होंने जो स्टेज किया वॉकआउट आज नेशनल असेंबली से, क्योंकि उन्होंने कहा जी कॉन्स्टेंटली जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो यहां पे बैठे ही नहीं होते हैं, तो हम इधर आके क्या करेंगे। डेप्यूटी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह जो हैं उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट के लिए बड़ा डिसग्रेस है कि जब भी कभी नेशनल असेंबली की और सेनेट की प्रोसीडिंग्स होती हैं तो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, अपने सेक्रेटरीज को भेज देते हैं। कुछ सेक्रेटरीज को तो बातों के बारे में पता होता है, कुछ को नहीं पता होता, जो कि बड़े अफसोस की बात है, उनको ब्रीफ तक भी नहीं किया जाता कि मसला क्या है। सेनेट में भी चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी जो है उन्होंने भी कहा जी सेवरल टाइम्स मुझे जो है एजेंडा में लेकर आया हूं और मुझे वो डिफर करना पड़ा है, क्योंकि मिनिस्टर्स जो है वो होते ही नहीं है। हां अलबत्ता आज के दिन मीडिया का कहना है पाकिस्तान में कि मिनिस्टर जो थे बहुत बिजी थे, पार्लियामेंट के अंदर नहीं पार्लियामेंट के बाहर, क्योंकि सैकड़ों ही प्रेस रिलीजेस जो थी मिनिस्टरों की तरफ से मीडिया को आ रही थी और उनको कहा जा रहा था जी टॉप प्रायोरिटी दें इसको, टॉप प्रायोरिटी इसको दें। आज जो नेशनल असेंबली का सेशन हो रहा था उसमें सिर्फ जो है लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ बैठे हुए थे। पीपीपी के एमएनए असद नियाजी ने कहा कि यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ऑफ ऑल द मिनिस्टर सिर्फ एक तारड़ साहब बैठे हुए हमारे जवाब देने के लिए। पीपीपी के कमर नवीद कमर ने कहा कि ये सेक्रेटरीज और एडवाइजर्स को इनकी जगह पे अटेंडेंस के लिए भेज देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, और ये जो है इन्होंने उन्होंने इनको ब्लैंक चेक दिया हुआ है मिनिस्टर्स को, गवर्नमेंट ने, कि जी तुम आना चाहते हो आओ, नहीं आना चाहते हो नहीं आओ, तो ये हाउस की बड़ी बेइज्जती है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप हमें आके जवाब दें, अपने सेक्रेटरीज के जो है थ्रू हमको जवाब मत भेजें। और अगर ये सिलसिला चलता रहा, आमिर साहब ये जुमला बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुनना, और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो पीपीपी आपके साथ नहीं चल सकेगी। आपको समझ आ रहे हैं डॉट्स जो हम कनेक्ट कर रहे थे कल से, हैं जी, हाँ, जो कल से आपको डॉट्स हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैश पटेल का मैंने आपको बताया, फिर आप जानते ही हैं रिचर्ड ग्रेनल के बारे में, तो और कैसे एफबीआई को किया जाएगा जरा थोड़े से उसकी छतरौल, और फिर उसके बाद इतने जड़े बैठे हैं जो हमारे फयाज भाई कहते थे पिंडी बॉयज जो है उनको भी पता चल गया कि अब हमारे आशीर्वाद नहीं है बाप का, अंकल सैम का आशीर्वाद नहीं है, है? नहीं है। और अब जो है ये वाला जो है पीपीपी कह रही है हम आपके साथ खड़े नहीं रह जाएंगे, गवर्नमेंट तरले कर रही है पीटीआई के हमसे दोस्ती कर लो, तो आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ना दानो, कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब पीपीपी जो है क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि ये गवर्नमेंट अब डावाडोल है, तो वो अब कह रहे हैं जी कि हम आपका हिस्सा नहीं रहेंगे अगर ऐसा ही चला तो। अब बहाना तो कोई भी आप बना सकते हैं ना जी। एडवाइजर टू केपी चीफ मिनिस्टर जो है बैरिस्टर मोहम्मद सेफ, उन्होंने कहा जी कि कुर्रम एजेंसी में उस वक्त तक चैन सुकून नहीं आएगा जिस वक्त तक लोग जो हैं वहां पे अपने वेपन सरेंडर नहीं करेंगे, यहां पे सिक्योरिटी नहीं आ सकती और रोड्स ओपन नहीं हो सकते हैं और गवर्नमेंट जो है वो अपने ब्लॉकेट्स लिफ्ट नहीं कर सकती है, खासतौर पे जो 20 किलोमीटर रोड है टू पाना चिनार जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलें हो गई हैं क्योंकि डेली जो यूज की चीजें हैं वो नहीं आ सकती थी। उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट जो है अब हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जो है सारा सामान भी और जो खास तौर पे मेडिसिन हैं वो यहां पे पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये ज्यादातर अरसा नहीं चल पड़ेगी पड़ सकेगी चीज, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप अपने आर्म्स को रखें, आप डायलॉग करें और ये जो बंकर्स आपने बनाए हुए हैं इनको आप खत्म करें अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट्स डिसीजन, तो फिर जो है यहां पे अमन अमान आएगा और उसकी हम बात करेंगे। अच्छा जनाब, 25,000 पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने इस साल में यूरोप के असाइलम के लिए अप्लाई किया है। यूरोपियन यूनियन की जो एजेंसी है फॉर असाइलम उसके जो स्टैट्स सामने आए हैं वो तो कहती है जी कि 28,000 पाकिस्तानी एप्लीकेशंस जो हैं वो ईयू प्लस में आई थी बिटवीन अक्टूबर 2023 एंड अक्टूबर 2024। इसमें जी आमिर साहब सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तानियों का कौन सा है, कनाडा या यूएसए? नहीं, यू आर रॉन्ग। सबसे जो मोस्ट फेवरेट जो जगह है पाकिस्तानियों के लिए वो है इटली। इटली जाना चाहते हैं, ओ मेरे प्रा, मैंने भी बड़ा प्यार है इटली ना। इटली जाना चाहते हैं फॉलोड बाय फ्रांस एंड ग्रीस एंड जर्मनी। तो ये कंट्रीज हैं, ये कनाडा और यूएस उनका जो है टॉप लिस्ट पे नहीं है। ईयू कंट्रीज जो हैं वो कहते हैं जी कि 20,000 डिसीजंस जो हैं वो हमने जो हैं वो किए हैं विच इज जस्ट अबाउट 12% ऑफ रेफ्यूजी स्टेटस, जिसमें से के जो था वो जिनको के जिनमें से के 20,000 सॉरी डिसीजंस आए थे जिसमें से के 12% को हमने रेफ्यूजी स्टेटस दिया है। ईयू के स्टैट्स के मुताबिक जो है इलीगल ह्यूमन स्मगलिंग के चैनल्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तानियों को इलीगली इन मुल्कों में यूरोप में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहते हैं जी कि ये सारी चीजें उस वक्त अब खुलना शुरू हुई हैं जबकि ये ग्रीक बोट ट्रेजेडी हुई है जिसके अंदर 40 पाकिस्तानी मर गया, यानी इसको पहले पाकिस्तान 184 है। तो कल मतलब है प्राइम मिनिस्टर की हमने आपको सुनाई थी कि वो कह रहे हैं जी कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं इनके खिलाफ आप एक्शन लो, मतलब उससे पहले आपके भाई साहब भी थे, पीपीपी भी थी, तो मतलब है वो देख नहीं रहे थे कितनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, तो जी होने ना होश आइए। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान में भी चीजें बहुत गर्माई, मुझे लग रहा है पाकिस्तान से बहुत इम्प्रेस हो गया हिंदुस्तान, वरना बड़ी शांति से वो चल रहा था है इतने अरसे से, अभी जो है उनको भी तकलीफें होने लगी हैं, पाकिस्तान से सीख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान को। अच्छा अच्छी बात है, नहीं लेकिन आपके मुल्क में डिस्टर्बेंस आएगा है ना, ऐसा तो सीखो हमसे सीखो। अच्छा जनाब, दो कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उनकी डेथ हो गई है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अलेज किया है कि ये सारे का सारा पुलिस एक्शन में हुआ है इन टू सेपरेट इंसिडेंट्स इन प्रोटेस्ट जो कि बीजेपी रूल्ड जो प्रोविंसेस हैं यूपी और आसाम में। कांग्रेस के वर्कर्स जो हैं वो कहते हैं जी लखनऊ के अंदर पर्वत पांडे जो थे उनको तो पुलिस ने इतना पकड़ के मारा ड्यूरिंग घेराव ऑफ यूपी स्टेट असेंबली के उनकी डेथ जो है उसकी वजह से हो गई। आसाम के गुवाहाटी में कांग्रेस के जो लीगल सेक्रेटरी हैं मृदुल्ला इस्लाम उनकी डेथ उस वक्त हुई जब इनको टीयर गैस मारी गई और उसकी वजह से ये राजभवन के पास इनकी डेथ हुई। पुलिस जो है वो कहती है कि नहीं हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। अलबत्ता जो सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोज और चीजें आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि ये जो है पुलिस जो है इनके बैरिकेड्स को इनके ऊपर गिरा रही थी, इनको पीछे पुश कर रही थी, उससे लोग गिर रहे थे, इसके नीचे आ रहे थे, कुचले जा रहे थे और जो है वो उसकी वजह से काफी लोगों को जख्मी भी हुए। इसके साथ साथ आसाम की पुलिस जो है उसने 3 लोगों को गंगानगर से पकड़ा था इन आसाम कच्चड़ एरिया से और ये ऑटो रिक्शा में जा रहे थे। पुलिस कहती है जी कि ये मिलिटेंट्स थे और फैमिलीज कहती हैं कि ये फार्मर्स थे। तो फैमिलीज जो हैं पहुंची हुई हैं गुवाहाटी के हाई कोर्ट के अंदर क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि आसाम पुलिस ने इनको मार दिया है आफ्टर स्टेजिंग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। उन्होंने कहा जी कि 2 वीडियो भी हम आपको देते हैं। एक वीडियो में देखा जा रहा है कि पुलिस उनको सर्च कर रही है और उनके पास से कोई आर्म्स नहीं मिले। हालांकि जो चीफ मिनिस्टर थे असम के उन्होंने कहा था जी कि जब पुलिस ने इनको पकड़ा तो इनके पास से आर्म्स निकले थे। दूसरी वीडियो जो उन्होंने पुलिस को जो हाई कोर्ट को दी है उसमें देखा जा रहा है कि इनके हाथ पीछे बांध के और इनको ले जाया जा रहा है एक फॉरेस्ट के अंदर और जाहिर है फिर उधर इनको गोली मारी होगी। तो वो कहते हैं जी ये दोनों वीडियोस एविडेंस के तौर पे है जो हम कोर्ट को दे रहे हैं। असम की गवर्नमेंट जो है उसने भी अब फाइल किया एक एफिडेविट इन गुवाहाटी हाई कोर्ट और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल झूठे इल्जाम ये फैमिलीज हम पे लगा रही हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के। ये बिल्कुल हमने जो ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट ने या पुलिस ने ऐसा नहीं किया। बी आर अम्बेडकर जो हैं अगर आपको पता हो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था हिंदुस्तान का और उसको वो बड़ा बाबा समझते हैं अपना, जाहिर है बड़े बहुत इज्जत की निगाह से अम्बेडकर साहब को देखते हैं, तो उसके ऊपर अब चीजें जो हैं बहुत भड़क गई हैं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी जो हैं आज कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था 75 उसकी 5th एनिवर्सरी थी उसके में बात करते हुए हाउस में उन्होंने सावरकर को कहा, उन्होंने कहा जी कि ये बीजेपी वाले जिसको फॉलो करते हैं जो इनका लीडर है सावरकर वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव ही नहीं करता था। फिर उन्होंने एक किताब उठाई मानु सिमत्री जो कि लिखी थी बाय बी आर अम्बेडकर इन डिसंबर 25, 1927 जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ये कास्ट सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा जी कि सावरकर जो हैं वो तो कहते थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है और ये जो चीजें इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है हिंदुस्तान के साथ। और हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि ये मनुस्मृति जो है इसको तो वेदा के बाद सबसे ज्यादा हम वर्शिप करते हैं जिस पार्ट ऑफ आवर कल्चर और हमारी स्पिरिचुअल और डिवाइन जो हमारी जो मुल्क का ग्रोथ है वो इसी किताब के ऊपर बेस करता है। लेकिन जी इन्होंने बड़ी जो है उसकी बेइज्जती की है और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलते नहीं है और इनका तो लीडर नहीं मानता था तो ये क्या करते हैं। अच्छा जनाब अब जब ये हुआ तो उसका कोई अब एक रिएक्शन भी आना था। वो 2 किताबें दिखा रहे थे आज वो उसमें पार्लियामेंट के अंदर कि हम तो इनको फॉलो करते हैं। अच्छा जी अब उसके फौरन बाद ही बीजेपी ने इनके ऊपर केसेस डाल दिए। दिल्ली पुलिस जो है उन्होंने इनके खिलाफ जो है एफआईआर जो है वो की क्योंकि बीजेपी ने इनको एक्यूज किया कि इन्होंने फिजिकली असॉल्ट किया है 2 बीजेपी के एमपीज को जो क्लैशेस हुए थे आज पार्लियामेंट में उसमें और इनको चार्ज किया है फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर जब इनकी जो है वो जब स्कफल चल रहे थे यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आउटसाइड मक्कर दीवार एंट्रेंस। जो राहुल गांधी है वो बिल्कुल उसको डिनाई करते हैं, कहते हैं मैंने तो किसी को हाथ नहीं लगाया। बीजेपी कहते हैं कि इन्होंने इनको धिक्के मारे मुक्के मारे और इनको गिराया और इनको जख्मी किया और इनके सर फाड़े। गांधी जी कहते हैं कि मैंने तो इनको हाथ ही नहीं लगाया, ना मैं इनको जानता हूं ना मैं इनके पास आया हूं। अब ये जिस वक्त आया तो फिर जनाब अमित शाह साहब ने भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है कांग्रेस के ऊपर किए क्योंकि कल इन्होंने अमित शाह साहब ने कहा कि ये क्या तुम लोग ये फैशन बना लिया अम्बेडकर बहुत दफा को 7-8 दफा उन्होंने अम्बेडकर का नाम लिया कि तुम लोग बोलते रहते हो इतनी दफा तो किसी गॉड का भी अगर नाम लोगे तो वो भी हेवन में जो है तुमको पहुंचा देगा तो तुम लोग ये क्या करते हो। अब आपको मैंने बताया ही है कि बी आर अम्बेडकर जो है डॉक्टर साहब उनके लिए बड़ा प्यार है इंडियंस में तो उन्होंने कहा जी कि ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है और इसको रिजाइन करना चाहिए। कांग्रेस ने भी कहा जी इसको रिजाइन करना चाहिए। अमित शाह ने आज कहा कि जी कांग्रेस मेरे वर्ड्स को हमेशा जो है वो ट्विस्ट करती है और गलत तरीके से लेके जाती है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुम लोग चीजों को एक्सप्लॉइट करते हो तो मैं रिजाइन बिल्कुल नहीं दूंगा। खुश हो आमिर साहब? अच्छा जी। और जनाब कबीर बैदी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कि उन्होंने अपने बच्चे की डेथ की बात की है। इनके बेटा जो था सिद्धार्थ, जिनसे इनका बड़ा प्यार था, उसकी डेथ हो गई थी। उसके बारे में उन्होंने कहा कि आपने कभी खुल के बताया नहीं कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ। तो आज कबीर बैदी ने इंटरव्यू जो दिया उसमें कहा, उन्होंने कहा कि एक एक्सेप्शनली ब्रिलियंट बॉय था और बहुत ज्यादा टॉप पोजीशंस पे रहता था, और यानी कि ग्रेड्स लेता था, और जो यूएस की भी जो टॉप आईटी प्रोग्राम था, मोस्ट प्रेस्टिजियस जो है, वो पढ़ने के लिए ये गया था क्योंकि बहुत ही ज्यादा ब्राइट बच्चा था। लेकिन जब वहां पे गया तो इसको शिजोफ्रेनिया जो है वो डायग्नोज किया गया, और इसके ऊपर मैंने पूरा एक चैप्टर अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है कि कैसे इसकी तकलीफ के साथ साथ मैं भी गुजरा हूं, और जो उसके फाइनल मंथ्स थे सिद्धार्थ के उसमें मैं उसके साथ था। लेकिन ये एक बाप की स्टोरी है जिसने अपने बच्चे की जिंदगी बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा शायद इतना अपनी जिंदगी से तंग आ गया था कि उसने सुसाइड कर ली, अपनी जिंदगी ले ली। तो आप सोच सकते हैं कि एक बाप किस तकलीफ से गुजरा होगा जिसका इतना काबिल बच्चा जो है वो चला जाए। तो वो कहते हैं जी कि मेरी जिंदगी की ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है अपने बच्चे को, क्योंकि मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सका। तो वो कहते हैं जी मेरी जिंदगी का बड़ा रिग्रेट है। ठीक है जी। और जनाब हॉलीवुड के जो बिगेस्ट सितारे स्टार जो हैं वो पहुंचे हुए थे धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में, क्योंकि वड्डों के सारों के बच्चे जो हैं ये धीरूभाई अंबानी स्कूल में पढ़ते हैं। इसमें आए हुए थे अटेंड करने इस एनुअल डे सेलिब्रेशन को शाहरुख खान, गौरी खान, ऐश्वर्या रॉय, बिग बी, अभिषेक, करीना कपूर, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा जो डिजाइनर हैं, रितेश और जेनेलिया देशमुख, और जो साउथ के एक्टर हैं पृथ्वीराज सुकुमारन, और बहुत ही जो है और भी बहुत सारे सितारे आए हुए थे। तो वो आए हुए थे अपने बच्चों की यहाँ पे परफॉर्मेंसेस देखने के लिए, जिसमें थी मिशा खान, तैमूर एंड जय खान, सॉरी मिशा कपूर नॉट खान, तैमूर एंड जय खान, यश एंड रूही जौहर, अलन क्रीता, सुकुमरन, रियान एंड रायल देशमुख, एब्राम खान और अराध्या, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जी ऐसे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा साहब जो हैं जी वो काफी गुस्से में नजर आए, और उन्होंने आज बहुत स्लैम किया मुकेश खन्ना को, क्योंकि मुकेश खन्ना जो हैं बार बार कह रहे थे कि सोनाक्षी सिन्हा की सही से तरबियत उसके पेरेंट्स ने नहीं की है। हुआ क्या था कि एक केबीसी के प्रोग्राम में सोनाक्षी सिन्हा गई थी और उससे क्वेश्चन किया गया था लॉर्ड हनुमान के बारे में, जो कि उसको नहीं पता था, और उसने कहा जी मैं अपनी लाइफलाइन यूज करना चाहूंगी। तो उस पे इन्होंने कहा जी कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका अपब्रिंगिंग कैसा है, लेकिन उसके लिए मैं इसको फॉल्ट नहीं दे रहा हूं, इसके बाप ने अगर इसको कुछ बताया नहीं है तो कैसे चलेगा। आप अपने बच्चों को इतने मॉडर्न हो गए हैं कि अपनी संस्कृति, अपना धर्म सनातन के बारे में नहीं बता रहे हैं। मैं जो है, मैं शक्तिमान का आपको पता ये रोल करते हैं, बड़े फेमस है उसके लिए, मैं अगर आज शक्तिमान बन के आता तो मैं बच्चों को अपनी सारी संस्कृति और वो सारा कुछ सिखाता। अब इसके ऊपर जो बाप है शत्रुघ्न वो तो बड़े भड़क गए। उन्होंने कहा जी तुम कैसे क्वालिफाई करते हो कि तुम रिलीजियस मैटर्स के ऊपर बात कर सकते हो या किसी भी और बात पे तुम एक्सपर्ट हो, तुम्हें किसने अपॉइंट किया है हिंदू रिलीजन का गार्डियन, और तुम कैसे क्वेश्चन कर सकते हो अगर किसी को कोई रामायण की कोई चीज नहीं पता है, जैसे कि मेरी बेटी को, तो इट डजंट मेक हर अ बैड हिंदू। सोनाक्षी जो है वो अपने बलबूते पे जो भी कुछ बनी है वो बनी है, मैंने उसको कभी भी लॉन्च उसके करियर को करने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी मैंने उसके लिए कुछ किया है। तो मेरे तीनों बच्चों के लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूं, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं अपने दम पे कर रहे हैं, बाप के नाम पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन पायन बाप का नाम जाता तो है ना साथ साथ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डॉटर ऑल्सो। ठीक है जी। तो ये उन्होंने बातें की। और आमिर साहब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, फाइनली आईसीसी मेंस 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसके सारे मामला तय हो गए हैं, और अब ये एक हाइब्रिड मॉडल को फॉलो करेगी। इंडिया जो है अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलेगा जब उसके मैचेस पाकिस्तान के साथ होंगे, और पाकिस्तान भी जो जो उसके मैचेस इंडिया से होंगे वो न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलेगा। तो इसलिए इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी आईसीसी के मैचेस 2024-2027 साइकिल के हैं वो न्यूट्रल वेन्यूज पे होंगे। पीसीबी जो थी पहले इसको हाइब्रिड सिस्टम को नहीं मान रही थी, लेकिन फिर उसको जो है न्यूट्रल वेन्यूज के लिए मानना पड़ा, क्योंकि इंडिया ने कहा था हम नहीं खेलेंगे, बीसीसीआई डील को साइन नहीं कर रही थी। तो ये डील जो है अब एक्सटेंड की गई है विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 की के लिए भी, जिसको के होस्ट करेगा इंडिया। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान की विमेन टीम इंडिया में मैचेस खेलने नहीं जाएगी। मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 होस्टेड बाय इंडिया एंड श्रीलंका, उसके लिए पाकिस्तान श्रीलंका तो जाएगा, इंडिया नहीं जाएगा। पीसीबी ने कहा कि ये होस्टिंग राइट्स ऑफ जो विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2028 है वो पीसीबी को दिए गए हैं, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए प्री कंडीशंस हैं। सेम प्लान जो है वो अप्लाई यहां पे भी करेगा, इंडिया जो है पाकिस्तान में नहीं आएंगी उनकी लड़कियां खेलने, और किसी न्यूट्रल प्लेस पे वो खेलेंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी का एज अ रिजल्ट स्केड्यूल जो है बहुत जल्दी आ जाएगा। पाकिस्तान जो है वो एम कर रहा है कि अपना 2017 का जो ये टाइटल है उसको डिफेंड करे। 8 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसके के अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान है। ठीक है, आज था सेकेंड ओडीआई बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने के लिए ऑप्ट किया। दिस वाज द फर्स्ट इन थ्री नहीं एट थ्री मैच ये सीरीज हो रही है, और ये है केप टाउन पे ये हो रही थी। तो पाकिस्तान ने बनाए 329 और साउथ अफ्रीका को उन्होंने आउट कर दिया फॉर 248 इन फॉर 10 इन 43.1 ओवर्स में। रिजवान ने आज बनाए 82 किसे बॉल्स के ऊपर 80, बाबर आजम ने 95 बॉल्स पे बनाए 73, साउथ अफ्रीका के हैनरिक क्लासन ने बनाए 97 ऑफ 74 बॉल्स। पाकिस्तान के कामरान गुलाम ने भी इसके अलावा जबरदस्त बैटिंग करते हुए 32 बॉल्स पे 63 रन बनाए। शाहीन शाफरीदी ने 4 विकेट ली, नसीम शाह ने 3, अबरार ने 2। तो जनाब जबरदस्त ये भी मैच रहा। वेस्ट इंडीज ने अपॉइंट किया है फॉर्मर कैप्टन डैरन सैमी को फॉर एज कोच इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स, T20, ODI, टेस्ट क्रिकेट। वेस्ट इंडीज जो है उन्होंने कहा जी कि जो सैमी है उसका बहुत ही एक्सेप्शनल लीडरशिप है जो उसने अपने ये सारे खेल के वक्त में शो किया है, और स्पेशली विद व्हाइट बॉल टीम्स, और उसका विजन, डेडिकेशन, एबिलिटी टू इंस्पायर प्लेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा आइडियल है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि तुम तीनों फॉर्मेट्स को लीड करोगे, और इसकी प्रेजेंस जो है वेस्ट इंडीज क्रिकेट का जो स्टेटस है उसको बहुत ऊपर लेके जाएगी। ठीक है जी। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज, आपको पता ही है कि हो रही है आजकल कायदे आजम इंटर प्रोविंशियल गेम्स, इसके अंदर बॉक्सिंग के अंदर बलूचिस्तान ने 4 गोल्ड मेडल लिए एंड दे आर प्लेस 3rd इन दीज गेम्स। पंजाब जो है वो लीड कर रहा है। ये मैचेस सारे हो रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में, और इसमें इन्होंने पंजाब ने लिए हैं ऑल टुगेदर 138 मेडल्स, 66 गोल्ड, 43 सिल्वर, 29 ब्रोंज। केपी इज नंबर 2 विद 72 मेडल्स, 17 गोल्ड, 25 सिल्वर, 30 ब्रोंज। बलूचिस्तान इज नंबर 3 विद 51 मेडल्स, 14 गोल्ड, 12 सिल्वर, 25 ब्रोंज। और जो बलूचिस्तान के समी उल्ला थे उन्होंने डिफीट किया था सिंध के बिलाल कामरानी को टू विन गोल्ड इन 48 किलोमीटर्स लाइट फ्लाईवेट फाइनल। रहमान शाह ने ओवरकम किया गिलगित बल्तिस्तान के साबिर मोहम्मद को इन 54 किलोग्राम डिसाइडर, और 60 किलोग्राम लाइटवेट फाइनल में अजमल ने आउटक्लास किया मोहम्मद अली ऑफ पंजाब को। इसके अलावा अबू राफे ने बीट किया सिंध के जर्रार को टू विन 67 किलोग्राम फेदर वेट गोल्ड। तो इस तरह से 4 इन्होंने लिया। आजाद जम्मू और कश्मीर जो है उसने जीते 24 मेडल्स, उसमें से 1 गोल्ड है। गिलगित बल्तिस्तान जो है उसने उसके पास कोई भी गोल्ड नहीं है, लेकिन उसके पास 12 मेडल्स और 2 सिल्वर हैं, 10 ब्रॉन्ज है। तकरीबन 2000 एथलीट्स ने इस गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। आई एम रियली सरप्राइज कि सिंध का मेरे पास क्यों नहीं है कि सिंध के में कितने उन्होंने मेडल्स लिए हैं, लेकिन जाहिर है कि सिंध चौथे नंबर पे ही अब होगा। तो बहरहाल जी कोई बात नहीं है, आज अगर मिस हो गया सिंध का तो सिंध का हम आपको कल बता देंगे कि उसने कितने जो है मेडल्स लिए हैं इसमें कायदे आजम इंटर प्रोविंशियल गेम्स में। तो ये बड़ी जबरदस्त गेम चली है। अब मुझे बड़ा मजा आया वैसे कि अगर ये 30 गोल्ड अगर कॉमनवेल्थ में या उसमें जीत के आए पाकिस्तान,
इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू आमिर।
तमाम नाज़रीन का और सामईन का बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी,
और
तुमने सो लिया, तुम्हारी नींद पूरी हो गई?
मैं तो अरे आप तो 5 मिनट के काम करती हैं, सुबह से काम करती हैं। आपका बहुत शुक्रिया।
थैंक यू आमिर।
और इंशाल्लाह जिंदगी रही।
हाँ जी।
और आप जिंदा रहें
जी,
तो फिर कल मुलाकात होगी।
ठीक
है। बहुत शुक्रिया तमाम सामईन का और नाज़रीन का भी हमारे साथ शामिल होने का, और पूरी मैनेजमेंट की तरफ से। मैनेजमेंट
مینجمنٹ
کی طرف
مینجمنٹ
عارف مظفر صاحبہ کی طرف سے، ماجد جمال صاحب کی طرف سے اور ہمارے انجینئر ذیشان احمد کی طرف سے اب اجازت لیں گے. میں آپ کا ہوسٹ عامر احمد، انشاءاللہ زندگی رہی اور صحت رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم.
رج کے رلایا، رج کے ہسایا، میں نے دل کھو کے عشق کمایا، مانگا جو اس نے ایک ستارہ، اڑے زمین پہ چاند بلایا،
جو آنکھوں سے کہتے تھے بچھڑیں گے نا ہم کبھی، وہ جو کہتے تھے بچھڑیں گے نا ہم کبھی، الوداع ہو گئے دیکھتے دیکھتے، سوچتا ہوں روشن سے تب آسمان میں گئی، ایک میں اور شام گئی، چاند روشن سے تب آسمان میں گئی، یاریوں